नमस्कार भारत, तारीख 25 जनवरी दिन सोमवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। अमेरिका में भयंकर बर्फबारी के चलते अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत। न्यूयॉर्क में वाहनों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध उठाया गया।
The travel ban has been lifted. That does not mean people should go out and take a ride and see the sights.
फ्रांसीसी राष्ट्रपति ओलांद की भारत यात्रा का सामरिक, कूटनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या महत्व है?
व्यापार और निवेश के संबंध है, खासतौर से जो न्यूक्लियर एनर्जी का मामला है, और अभी ये जो नया जो राफाल के बारे में लग ये रहा है कि अल्टीमेटली भारत फ्रांस से ये विमान उनसे जरूर खरीदेगा।
कार्यक्रम में होगी वसुतुल्ला खां की डायरी, अखबारों की समीक्षा, लेकिन थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में बर्फीला तूफान थम गया है, जिसके बाद वहां वाहनों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध उठा लिया गया है। न्यूयॉर्क के मेयर के अनुसार पिछले 145 साल में न्यूयॉर्क में दूसरी बार ऐसी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। तूफान के कारण देश में अलग अलग हादसों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि पाकिस्तान चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, हालांकि उसे दिखाना होगा कि वह चरमपंथी गुटों को कुचलने के बारे में गंभीर है। पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हुए हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से संपर्क साधने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। वॉशिंगटन में भारतीय समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि दोनों नेता इस दिशा में बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं कि क्षेत्र में हिंसा और चरमपंथ का मुकाबला कैसे करना है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री शिमोन पेरेस को तेल अवीव के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 92 साल के पेरेस को सीने में दर्द की शिकायत थी। फिलिस्तीनियों के साथ ओस्लो शांति समझौते पर हस्ताक्षर कराने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर रफी वाल्डेन ने कहा कि जाँच के बाद उन्हें कल अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। शाम को उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। यह उन्हें दिल का दौरा पड़ने के हफ्ते भर बाद हुआ है। वे घर पर आराम कर रहे थे जब उन्हें तबीयत थोड़ी नासाज लगी। हम उन्हें अस्पताल ले गए जहां उनकी दिल की धड़कन थोड़ी असामान्य दर्ज की गई। यह कोई बड़ा मसला नहीं है और उन्हें इलाज की जरूरत भी नहीं पड़ी। वे अभी ठीक महसूस कर रहे हैं। कल सुबह तक हम उन्हें निगरानी में रखेंगे और उसके बाद ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी देने के बारे में विचार करेंगे। ये थे शिमोन पेरेस का इलाज कर रहे डॉक्टर रफी वाल्डेन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जिहादी गतिविधियों पर निगरानी रखने वाले समूह साइट का कहना है कि इस्लामिक स्टेट ने कथित तौर पर पेरिस पर हमला करने वाले संदिग्ध हमलावरों में से कुछ का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया है। वीडियो की तस्वीरों में से एक की तस्वीर अब्दुल हमीद अबाउद से मिलती जुलती दिखती है, जिसे हमलों का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। साइट का कहना है कि वीडियो को पेरिस हमलों से ठीक पहले इस्लामिक स्टेट का गढ़ माने जाने वाले रक्का में फिल्माया गया है। 13 नवंबर को हमले किन जगहों पर हुए उनके नाम भी वीडियो में दिए गए हैं। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के विधायक सरफराज आलम को जमानत मिल गई है। उन पर कुछ दिन पहले डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में दिल्ली के एक दंपत्ति के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। पटना रेलवे पुलिस के एसपी के मुताबिक 20,000 रुपए के दो मुचलकों पर उन्हें थाने से जमानत मिल गई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर। अमेरिका के 20 प्रांतों में कई जगह करीब 1 मीटर तक बर्फ गिरी है और तूफान के बाद हालात से निपटने में करोड़ों लोग जुट गए हैं। न्यूयॉर्क, राजधानी वॉशिंगटन डीसी समेत तमाम शहरों के लोग सड़कों पर बर्फ हटाने में जुटे हैं। न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान थमने के बाद अब वाहनों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध उठा लिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग टहलने निकल जाएं। हालांकि राजधानी वॉशिंगटन डीसी में मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। अब तक इस बर्फीले तूफान के चलते लगभग 7,000 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। पूरे अमरीका में 20 से ज्यादा लोग अलग अलग घटनाओं में मारे जा चुके हैं। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है।
36 घंटे तक जारी रहने वाले बर्फीले तूफान के गुजर जाने के बाद रविवार को 8 करोड़ से ज्यादा प्रभावित लोग अब बर्फ में से उबरने की कोशिश में लगे हैं। कई इलाकों में करीब 3 फुट बर्फ गिरी है और अब सफाई का काम तेजी से जारी है, लेकिन कई सड़कें अब भी बर्फ से ढकी हैं, जिससे लोगों को मुश्किल का सामना है। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कोमो ने सड़क पर ट्रैफिक की आवाजाही पर पाबंदी हटा दी है, लेकिन लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा,
The travel ban has been lifted. That does not mean people should go out and take a ride and see the sights. The roads are...
सड़क पर ट्रैफिक के चलने पर प्रतिबंध हटा लिया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोग बाग बाहर निकल के घूमना फिरना और नज़ारे देखना शुरू कर दें। ज़्यादातर सड़कें तो साफ़ हैं, लेकिन अब भी कुछ जगह बर्फ़ जमी है और हाईवे पर गाड़ियां बर्फ में फंस रही हैं, तो अगर ज़रूरी ना हो तो सड़कों का प्रयोग ना ही करें तो बेहतर है। ये थे न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कोमो के शब्द। न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट तो खुल गए हैं, लेकिन अब भी रनवे पर बर्फ साफ करने का काम जारी है, इसीलिए रविवार को भी 3,000 से अधिक उड़ानें रद्द की गईं और सोमवार को भी करीब 700 उड़ानें रद्द रहेंगी। ट्रेन और बस सेवाएं भी काफी हद तक फिर से शुरू हो गई हैं। कुछ इलाकों में अब भी ट्रेनों की पटरी से बर्फ हटाई जा रही है। रविवार को धूप चारों ओर खिली हुई थी और कई जगह लोग अपने घरों, गाड़ियों और दुकानों के सामने से बर्फ हटाने में लगे रहे और इसमें कुछ लोग एक दूसरे की मदद भी करते रहे। एक अमेरिकी जॉन स्कॉट ने अपने पड़ोसी की मदद की।
They help other people. They help us, so we gotta help them. One hand wash the other sometimes. I see them, they were stuck. They need help.
ये लोग दूसरों की मदद करते हैं, हमारी भी मदद की, इसलिए हमने भी इनकी मदद की, क्योंकि मैं देख रहा था कि इनको बर्फ हटाना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने अपने फावड़े से बर्फ हटाने में मदद कर दी। भारी बर्फबारी के बाद कुछ लोगों के लिए काम बढ़ गया है, तो वहीं कुछ लोगों को चारों ओर फैली हुई सफेद बर्फ का नजारा पसंद भी आ रहा है। एक अमरीकी रूडी स्लोन ने कहा,
I think it's, well, it's God, it's nature, but I wish it didn't come.
ये तो कुदरत की तरफ से है, लेकिन बेहतर होता कि बर्फबारी न होती। बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है, मेरी 2 गाड़ियां बर्फ में फंसी हैं, बहुत ज्यादा बर्फ है। वहीं एरिक गाउच को बर्फ बहुत पसंद आ रही है।
I love it. But it's inconvenience for everybody trying to get around, trying to take their car and stuff out.
मुझे तो बर्फ बहुत पसंद है, लेकिन सभी के लिए बर्फ से मुश्किल भी हो जाती है, उनको चलने में मुश्किल होती है, गाड़ियां फंस जाती हैं, लेकिन इसके अलावा मैं तो बर्फ का आनंद ले रहा हूं। शहर के इतिहास में ये दूसरा सबसे शक्तिशाली बर्फीला तूफान था, जिसमें 26.8 इंच बर्फ गिरी। सन 2006 में रिकॉर्ड 26.9 इंच बर्फबारी हुई थी। दिन रात जगमग करने वाले न्यूयॉर्क शहर में जीवन धीरे धीरे वापस आता महसूस हो रहा है। ब्रॉडवे थिएटर के कार्यक्रम फिर से खुल गए हैं, रेस्तरां, मॉल्स, बाजार फिर खुलने लगे हैं, वॉल स्ट्रीट के भी सोमवार को सामान्य तौर पर खुलने के आसार हैं, शहर में स्कूल भी खुले रहेंगे। न्यूजर्सी, नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया और वाशिंगटन में भी भारी बर्फबारी के बाद अब सफाई का काम तेजी से जारी है। न्यूजर्सी में कुछ तटीय इलाकों में ऊंची लहरों का पानी कुछ रहायशी इलाकों में दाखिल हो गया है। न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी में हजारों घरों और दुकानों में बिजली भी चली गई थी, जिसे धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। वाशिंगटन में करीब 3 फुट बर्फ गिरने के बाद अब भी सड़कों से बर्फ हटाने के लिए संघर्ष जारी है। वाशिंगटन की मेयर म्यूरियल बाउसर ने जनता से भी मदद की अपील की है।
Today, we're not only digging out, but we're asking all the residents of the District of Columbia.
वाशिंगटन की मेयर कह रही थी, आज हम बर्फ हटाने का काम शुरू कर रहे हैं और इसमें हम वाशिंगटन डीसी की आम जनता और कारोबारी लोगों से भी मदद मांग रहे हैं। शहर के फुटपाथ से बर्फ साफ करने में कृपया हमारी मदद करिए। मेयर का कहना था कि शहर में 4,000 स्वयंसेवक बर्फ हटाने के लिए दरकार हैं। वाशिंगटन में अब भी एयरपोर्ट और ट्रेनें बंद पड़ी हैं और उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को सुबह ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
तो अमरीका में जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगी है।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 19, 25, 41 और 49 मीटर बैंड, यानी 5,980, 7,395, 11,995, 15,510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आए फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने भारत के साथ रक्षा और सामरिक संबंधों पर जोर दिया है। कल चंडीगढ़ में उन्होंने कहा,
C'est le meilleur symbole que l'on peut donner à la relation entre la France et la...
फ्रांसवा ओला कह रहे थे कि ये फ्रांस और भारत के बीच रिश्तों के शानदार संकेत है। पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच रिश्तों में नई गर्माहट आई है। भारत और फ्रांस एक साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। फ्रांसवा ओला के शब्द। फ्रांस्वा ओला की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर दस्तखत होने की संभावना है। ओलान की भारत यात्रा का सामरिक, कूटनीतिक और आर्थिक नजरिए से क्या महत्व है, फ्रांस को भारत से क्या चाहिए और भारत फ्रांस से क्या चाहता है, इन्हीं सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने संपर्क साधा दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में यूरोपियन अध्ययन केंद्र के प्रमुख प्रोफेसर गुलशन सचदेवा से।
भारत ने अपना सबसे पहला सामरिक समझौता किसी के साथ किया था 1998 में, वो फ्रांस के साथ किया था। रूस और अमेरिका और बाकी 20-25 जितने सामरिक समझौते भारत ने किए हैं वो सब उसके बाद हुए हैं, चाहे वो शीत युद्ध का जमाना था, उसके बाद का जमाना भी रहा है। भारत और फ्रांस की जो सामरिक साझेदारी है, जो सामरिक समझ है एक दूसरे की, वो बहुत पहले से काफी करीबी रही है। 2-3 मुद्दे जो अभी उभर के आ रहे हैं, चाहे वो आतंकवाद का मुद्दा हो, वो पेरिस का हो, यहाँ पे पठानकोट का हमारा हमला हो, या जो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा है, बाकी जो व्यापार और निवेश के संबंध है, खासतौर से जो न्यूक्लियर एनर्जी का मामला है, तो ये सारे मुद्दे तो पिछले जितनी भी मीटिंगें हुई हैं उन सब में आए हैं। और अभी ये जो नया सौदे के बारे में, जो राफाल के बारे में बातचीत, हालांकि उसके बारे में भी 10 साल से लगभग बातचीत चल रही है, लग ये रहा है कि अल्टीमेटली भारत फ्रांस से ये 30-40-50 जितने भी फाइनली नंबर आएगा ये विमान उनसे जरूर खरीदेगा, तो उसके बाद ये लंबे समय तक इसका असर हमको देखने में नजर आएगा।
ये तो भारत का पहलू हुआ, अब ये बताएं कि फ्रांस की भारत में क्या दिलचस्पी है।
वो भारत को एक बहुत बड़ी बाजार देखते हैं, 400-500 कंपनियां ऑलरेडी फ्रांस की यहाँ पे कार्यरत हैं और उन्होंने कुछ यहाँ पे निवेश भी किया और निवेश की संभावनाएं उनको यहाँ पे नजर आती हैं। दूसरा, अब अगर हम खरीदते हैं उनसे राफाल, तो ये भी उनके लिए लगता है कि भारत एक बहुत बड़ा फौजी साजो सामान है, उसको खरीदने का एक बहुत बड़ी मंडी है। तीसरी बात ये है कि अभी आतंकवाद का मुद्दा, जैसे भारत तो बहुत पहले से उससे जूझता आया है, लेकिन अब ये पूरे पश्चिम के देशों के लिए भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है और जिस तरह की परिस्थितियां, घटनाक्रम अभी चल रहा है, उसमें मुझे लगता है कि यूरोप के लिए कम से कम आने वाले 10-15 साल एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बना रहेगा। तो उसके अंदर भी उनको लगता है कि भारत के साथ एक अच्छी साझेदारी बनना वैश्विक रूप से एक बहुत बड़ा कदम होगा उनके लिए भी। भारत पूरे इंडियन ओशन के अंदर, भारत की जो नेवी है उसका बहुत बड़ा रोल है पूरा इंडियन ओशन के अंदर हो सकता है, और फ्रेंच नेवी भी काफी कुछ जगहों पे काफी एक्टिव है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर मुझे लगता है कि फ्रांस को ये लगता है कि भारत के साथ जो साझेदारी बनेगी वो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामरिक दृष्टि से बहुत अच्छी साझेदारी है, जिसके साथ वो लंबा एक पारी खेल सकते हैं, एक लंबी साझेदारी भारत के साथ बन सकती है।
जी, ये भी बताएं कि क्या भारत और फ्रांस के मजबूत होते संबंधों की वजह से कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें दिक्कत हो सकती है।
इसकी चिंता सिर्फ दो देशों को थोड़ी बहुत हो सकती है। एक चिंता वो रूस को हो सकती है, क्योंकि अगर उनके साथ हमारी साझेदारी बहुत अच्छी बनती है, खासतौर से अगर हम फौजी साजो सामान यूरोप से, पश्चिम के देशों से ज्यादा खरीदना शुरू करते हैं, तो जाहिर तौर से ये उसका परिणाम ये निकल सकता है कि रूस से हम उसके कुछ अपना साजो सामान कुछ कम खरीदे आने वाले सालों में, तो उनके लिए एक चिंता का विषय थोड़ा बन सकता है। दूसरा, शायद ये कारण कहीं हद तक चीन के लिए भी हो सकता है। जैसे देखिए कि एशिया के अंदर जो पूरा जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, चाहे और इकोनॉमिक आर्किटेक्चर जो है यहाँ का, वो अभी पूरा ठीक से बना नहीं। उसके अंदर भारत की भी और चीन की भी और जापान की भी, इन सब देशों की अच्छी साझेदारी उसके अंदर रहनी है, जब जैसे भी ये सारा एक नया आर्किटेक्चर यहाँ पे बन के एशिया में आएगा। चीन की खुद एक अच्छी साझेदारी है सारे यूरोप के देशों के साथ, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है क्योंकि अमेरिका के दबाव में जितने भी यूरोप के देश हैं वो वहाँ पे अपने हथियार जो हैं वो अभी चीन को नहीं बेच पा रहे हैं। तो उनको शायद, चीन को थोड़ी ये चिंता हो कि अगर भारत पश्चिम के देशों से भी काफी हथियार अगर खरीद सकता है, अमेरिका से भी हमने खरीदने शुरू कर दिए हैं, रूस से तो हम बहुत पहले से खरीदते ही रहे हैं, तो थोड़ी बहुत उनको कहीं चिंता ये भी लगे कि शायद कुछ बैलेंस जो है भारत की तरफ ज्यादा न बन जाए।
भारत और फ्रांस के बढ़ते रिश्तों का विश्लेषण कर रहे थे यूरोपियन अध्ययन केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रमुख प्रोफेसर गुलशन सचदेवा।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
तमिलनाडु के विल्लीपुरम में एक निजी योग मेडिकल कॉलेज की 3 छात्राओं ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर बिना रसीद के उनसे अधिक फीस वसूल करने के आरोप लगाए थे। मामले में पुलिस ने कॉलेज के चेयरमैन के बेटे और प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला, इमरान कुरैशी की रिपोर्ट सुनते हैं।
विलुपुरम जिले के कलाकुर्ची स्थित SVS योगा मेडिकल कॉलेज की इन तीन छात्राओं में से दो छात्र ई सरन्या और वी प्रियंका केवल 18 साल की थी और मुनीषा 19 साल की। छात्राओं ने अपने सुसाइड नोट में कॉलेज के प्रबंधन पर इल्जाम लगाया है कि वह छात्राओं को अतिरिक्त फीस के लिए परेशान कर रहे थे। अतिरिक्त फीस को लेकर कॉलेज में छात्राओं ने पिछले सितंबर और अक्टूबर में भी विरोध प्रदर्शन किए थे। पहले भी कुछ छात्राओं ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। समय पर हॉस्पिटल तक पहुंच पाने से उनकी जान बचा ली गई, लेकिन सरन्या, प्रियंका और मुनीषा को बचाया नहीं जा सका। सुसाइड नोट से पता चलता है कि इन तीनों छात्राओं का मकसद केवल इतना था कि उनकी आत्महत्या से शायद प्रशासन कॉलेज के प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। विलुपुरम के कलेक्टर M. लक्ष्मी कहती हैं, SVS कॉलेज के तीन छात्रों के शव संदिग्ध हालात में कुएं में पाए गए थे। मामला दर्ज करने के बाद हमने चार लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई के बारे में उन्होंने कहा, हमने छात्रों से बात की है। उनकी मुख्य शिकायत कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ है। उनकी मांग है कि कॉलेज को बंद कर दिया जाए और छात्रों का दाखिला किसी और कॉलेज में करवाया जाए। इन तीन छात्राओं में से दो छात्रों के शव का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है, क्योंकि उनके माता पिता ने इसके लिए अनुमति नहीं दी है। ये थे विलुपुरम के कलेक्टर M. लक्ष्मी के शब्द। दो छात्रों के माता पिता की मांग यह है कि जब तक कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई ही नहीं करती, तब तक वह पोस्टमार्टम के लिए अनुमति नहीं देंगे। मामले में पुलिस ने कॉलेज के चेयरमैन वासुकी सुब्रमण्यन के बेटे सुखी वर्मा और कॉलेज के प्रिंसिपल कलानिधि को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में सवाल उठा है कि जब कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ छात्र पहले भी इल्जाम लगाते रहे हैं और उनका कड़ा विरोध करते रहे हैं, तो इस पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया? अगर इस मामले में पहले कार्रवाई हुई होती तो शायद सरन्या, प्रियंका और मोनिशा को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
भारत के विदेश मंत्रालय ने नेपाली संसद में संविधान संशोधन संबंधी दो विधेयकों के पारित होने को सकारात्मक घटनाक्रम बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट करके उम्मीद जताई कि नेपाल बाकी मुद्दों को भी इसी तरह से हल करेगा। भारत की इस प्रतिक्रिया पर नेपाल का रुख जानने के लिए BBC नेपाली संवाददाता नेत्री केसी ने प्रधानमंत्री KP ओली के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार विष्णु रिमाल से बात की।
मुझे लगता है मित्र, ऐसा भारत ने इसमें सकारात्मक रुख अपनाया है तो ठीक ही है। इसमें नकारात्मक होने का कोई जरूरत है ही नहीं। हम कोई कारण बदल देखते ही नहीं, इसलिए मेरे ख्याल से इसको सकारात्मक तक नहीं स्वागत करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है।
क्या इसको भारतीय सरकार का परिवर्तित व्यवहार के रूप में लिया गया है?
हमारा पड़ोसी मुल्क हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा है, सदा से वो भी सहयोगी बने ऐसे लगता है हमें। जिस तरह से संविधान जारी होने के पहले और उसके बाद जिस तरह से भारत के अधिकारियों का रुख आया, वो उतना मैत्री नहीं लगा था हमें, इसलिए हम ये व्यवहार को परिवर्तन चाहते हैं। ज्यादातर ज्यादा वो मैत्री बने ऐसा लगता है हमें।
ये नाकाबंदी कायम रही तो प्रधानमंत्री का भारत भ्रमण क्या होगा?
भारत भ्रमण की बात और नाकाबंदी दूसरी बात है। भारत ने कभी भी नहीं कहा है ऑफिशियली कि उन्होंने नाकाबंदी किया है। उन्होंने कहा है कि नेपाल के अंदर जो आंदोलनकारी मधेशी ऑर्गेनाइज है, उन्होंने अवरोध किया है, ऐसा बोल रहे हैं। हमारे घर के भीतर कोई ये नाकाबंदी का वातावरण है ही नहीं। अगर फिर भी हमारा अंदर, हमारे देश के अंदर कोई नाकाबंदी नहीं है, उधर से सामान का सप्लाई में, आपूर्ति में जो अवरोध होगा, उसके बाद देखा जाएगा, फिर हमको दूसरे नजरे से सोचना पड़ेगा। भारत भ्रमण की बात तो न्यूता आया है, उनको हमने स्वीकार किया है। कब जाएं, कैसे जाएं, वो बात करेंगे।
जब प्रमुख तीन दलों के बीच में ये विधेयक पारित करने के लिए सहमति हुई थी, उसका भारत सरकार ने स्वागत किया था। अब नेपाल सरकार भारत से क्या चाहती है?
हमें लगता है भारत को फिर भी स्वागत करना चाहिए, संपूर्ण रूप से स्वागत करना चाहिए। नेपाल का जो शांति प्रक्रिया है, संविधान निर्माण का प्रक्रिया एक तुंगों में पहुंच चुका है, तो उनको नेपाली पॉलिटिशियनों को हौसला देने के लिए भी एक अच्छे पड़ोसी के नाते बहुत ज्यादातर उन्होंने अंदर दिल से ही इसको स्वागत करना चाहिए था।
नेपाल में प्रधानमंत्री केपी ओली के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार विष्णु रिमाल से बात कर रहे थे BBC नेपाली सेवा के संवाददाता नेत्र केसी। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। मोदी सरकार बनने के बाद इस तरह की ये पहली सिफारिश है। पूर्वोत्तर भारत में अखबार क्या लिखते हैं, ये खबर किस तरह से वहां परोसी गई है। सीधे चलते हैं गुवाहाटी दिलीप शर्मा के पास, पत्रकार जो कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। दिलीप, क्या कह रहे हैं अखबार?
देखिए, तो ये जो दो तीन दिन से कड़ाके की ठंड है पड़ रही है यहाँ पर, और इस बीच अरुणाचल की जो सियासत है काफी गर्माई हुई है, और इस गर्माहट को हम यहाँ के अखबारों में साफ महसूस कर सकते हैं। जो यहाँ का यहाँ से प्रकाशित जो टेलीग्राफ है उसने अपनी लीड खबर इसी को बनाया है कि अरुणाचल स्टेट से दिल्ली रूल, और इसमें कहा गया है कि भाई जो अरुणाचल में जो ये राष्ट्रपति शासन लगाने की जो केंद्र ने सिफारिश की है उसकी प्रतिक्रिया भी काफी आई है। इसने साथ ही नवाम तुकी का बयान भी छापा है जिसमें अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नवाम तुकी ने कहा है कि इस खबर में कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ बनाकर इस पूरे मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा था तो ये केंद्र को ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, और इससे पता चलता है कि जो केंद्र का जो इरादा है वो नेक नहीं है। इसी तरह मेरे हाथ में एक अगला अखबार है जो यहाँ से प्रकाशित होता है, ये हिंदी दैनिक है, दैनिक पूर्वोदय। दैनिक पूर्वोदय ने भी राष्ट्रपति शासन की सिफारिश वाली खबर को अपने पहले पन्ने पर लीड खबर बनाया है।
अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अगर अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की खबर को छोड़ दिया जाए तो बाकी कौन सी बड़ी खबरें छपी हैं अखबारों में?
इसके अलावा देखिए, जो टेलीग्राफ है उसने अपने रोहित बेमुला की जो खुदकुशी से जुड़ी खबर को अपने पहले पन्ने पर काफी प्राथमिकता के साथ जगह दी है, और इसमें कहा गया, इस खबर में कहा गया है कि भाई हैदराबाद विश्वविद्यालय के जो कुलपति अप्पा राव पोडलेले थे उनको अनिश्चित समय के लिए अवकाश पर भेज दिया गया है। वहीं दूसरे जो खबर है उसमें प्रधानमंत्री मोदी पर जो फियादीन हमले को लेकर जो खबर आ रही है उसको बड़ी प्राथमिकता से छापा है कई अखबारों ने। दैनिक पूर्वोदय ने छापा है कि बच्चा बम के निशाने पर प्रधानमंत्री, और खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद उनकी जो उनका जो एसपी सुरक्षा घेराव जो उनका घेराव रहता है उससे बाहर नहीं निकलने की उनको हिदायत दी गई है। इसके अलावा आसाम ट्रिब्यून ने भी फ्रांस के राष्ट्रपति के आगमन को की खबर को बड़े प्राथमिकता से छापा है। और
जी दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल्ली के जो सारे अखबार हैं, मैं बता दूं कि सारे अखबारों ने प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांसवा ओला की यात्रा की खबरों को छापा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप शर्मा। और अब कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं वसुतुल्ला खां की डायरी।
किसी भी मीडियाई पत्रकार को भूमि चाटते देखना मेरी आखिरी इच्छा तो हो सकती है, पहली तो बिल्कुल भी नहीं। मगर भूपेंद्र चौबे के साथ सनी लियोनी ने जो किया, खुदा किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। ये इंटरव्यू हर मीडिया इंस्टीट्यूट के कोर्स में शामिल होना चाहिए ताकि हर छात्र जान जाए कि प्रोफेशनल आत्महत्या कैसे की जाती है। ज्ञान और व्यवहार अगर बुद्धि तक पहुंचने की बजाय सिर्फ चमड़े के ऊपर ही रह जाए तो ऐसा ज्ञान अज्ञान बन जाता है। दक्षिण एशिया का मर्द अभी दक्षिण एशिया की औरत से बहुत पीछे है। शायद 100 बरस बाद वो ये समझ सके कि पिछले 100 वर्ष में महिलाएं ब्रान से ब्रेन और मर्द ब्रेन से ब्रान हो चुका है। नैतिकता का झंडा मर्द से औरत छीनती ही चली जा रही है, मगर शरीर की ताकत फिर भी खुद को दिमाग की ताकत के धोखे में रखे हुए है। जब खुद पे बस न चले तो औरत को सब बुराइयों की जड़ बता के अपनी जान छुड़ाना कितना आसान है। अभिनेत्री मीरा और वीना मलिक ने पाकिस्तानियों की पुण्यशीलता बर्बाद करके रख दी, जैसे उनसे पहले तो मस्जिदें भरी हुई होती थी। अकेली सनी लियोनी ने अखिल भारत को पोर्नोग्राफी यानी वेश्याओं के आचार व्यवहार का विवरण देखने वाला सबसे बड़ा देश बना डाला। जैसे सनी से पहले तो 90% युवा बस महाभारत देखने के लिए मरे ही तो जाते थे, और ढाका से मुंबई और इस्लामाबाद से काबुल तक सब पुरुष अपनी अपनी पत्नियों के भक्त थे और दूसरों की माओ बेटियों को बहन सम्मान देखते थे। मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा कि जिन लोगों को सनी लियोनी का एक एक अंग जबानी याद है वो अपने घर की औरतों का बिना पर्दे बाहर जाना भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। प्राचीन यरूशलम में लोगों ने एक लंबे समय तक पूजा पाठ, इबादत और प्रार्थना के जोखिम से बचने के लिए ये रास्ता ढूंढ निकाला कि हर कोई अपने अपने पापों की एक एक धज्जी बकरी के सींगों से बांध देता और फिर इस बकरी को ये सोच के शहर से हकाल दिया जाता कि हमारे पाप तो बकरी ले गई, अब हम फिर से पवित्र हो गए। मगर हम लोग यरूशलम वासियों से ज़्यादा चालाक निकले और अपनी कमजोरियों, अश्लील सोचों और रस्ट पकती आंखों की जिम्मेदारी महिलाओं पर डालना सीख गए। प्राचीन यरूशलेम की बकरी उपमहाद्वीप तक आते आते औरत बन गई और आज भी हम अपने पापों की गठड़ी उसके सर पे रख के परंपरा और नियम के तकिए पे बिंदास खर्राटे लेते हैं और फिर भूपेंद्र चौबे जैसों को शब्दों के पत्थर मार के समझते हैं कि हम तो ऐसे नहीं थे, ना हैं ना होंगे। एक सनी लियोनी कराची से दिल्ली तक पूरे समाज को डैश 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 खाली जगह खुद भर लें।
वसतुल्ला खां की डायरी सनी लियोन के हाल ही में भूपेंद्र चौबे जो कि एक पत्रकार हैं को दिए गए एक साक्षात्कार के बारे में थी। और अब कार्यक्रम में उन खबरों की बात जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
दिल्ली सरकार के सचिवालय पर हुई सीबीआई की छापेमारी के मामले में आज अगली सुनवाई हो सकती है। मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि वो छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज दिल्ली सरकार को वापस लौटाए। केरल के मुख्यमंत्री उमेन चांडी आज न्यायमूर्ति शिवराजन सोलर घोटाला जांच कमीशन के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं। कमीशन 7 करोड़ रुपए के इस घोटाले में कथित तौर पर उनके दफ्तर की भूमिका को लेकर जांच कर रही है। चर्चा में रहे शीना बोरा हत्याकांड में आज पीटर मुखर्जी की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। जयपुर साहित्य सम्मेलन का आज 5वां और आखिरी दिन है। आज सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि ट्रायल बाय मीडिया, द शिया रिवाइवल और आई यूनक मी हिजड़ा मी लक्ष्मी जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। विदेशों का रुख करें तो सीरिया में शांति बहाल करने की कोशिश में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में जनेवा में आज से सीरिया शांति वार्ता शुरू हो सकती है। इसमें अमरीका और रूस के अलावा कई और देश भी हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन शांति वार्ता की तारीख को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र के दूत ने बताया था कि इसकी तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अमरीकी रक्षा सचिव जॉन कैरी ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि वार्ता योजना अनुसार 25 तारीख से शुरू होगी।
इन खबरों पर आज हमारी रहेगी नजर और अब बात करते हैं खेल समाचारों की।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत की पीवी सिंधु ने कल मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट अपने नाम किया।
वीमेंस सिंगल विक्टराइज मलेशिया मास्टर्स 2016 बट अ बीडब्ल्यू ग्रैंड प्री गोल्ड सीरीज चैंपियन फ्रॉम इंडिया पीवी सिंधु।
तीसरी वरीयता के साथ खेलने वाली पीवी सिंधु ने फाइनल में गैर वरीयता हासिल स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर को 32 मिनट में ही 21-15 21-9 से मात दी। इस जीत के साथ ही पीवी सिंधु ने इस साल की शुरुआत खिताबी जीत के साथ की है। पुरुष एकल वर्ग का खिताब शीर्ष वरीयता हासिल मलेशिया के ली चोंग वेई ने जीता। फाइनल में उन्होंने अपने ही हमवतन इस्कंदर जुल्करनैन जैनुद्दीन को 21-18 21-11 से हराया। उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कल पुरुष एकल वर्ग के चौथे दौर के मुकाबलों में शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने कड़े संघर्ष के बाद फ्रांस के गिल्स सिमोन को 5 सेट तक चले मैच में 6-3 6-7 6-4 4-6 6-3 से मात दी। उनके अलावा छठी वरीयता हासिल चेक गणराज्य के थॉमस वर्डिच ने स्पेन के रॉबर्टो बतिस्ता अगेट को 4-6 6-4 6-3 1-6 6-3 से हराया। सातवीं वरीयता हासिल जापान के केई निशिकोरी ने भी फ्रांस के जो विल्फ्रेंड सोंगा को 6-4 6-2 6-4 से हराकर अपना दमखम दिखाया। महिला एकल वर्ग में भी चौथे दौर के मुकाबलों में पांचवीं वरीयता हासिल रूस की मारिया शारापोवा, शीर्ष वरीयता हासिल अमेरिका की सेरेना विलियम्स, स्पेन की कार्ला सुआरेज नुआरो और पोलैंड की एग्नियस्का रद्वांस्का भी जीतने में कामयाब रही। पुरुष युगल वर्ग में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार रोमानिया के फ्लोरिन मर्जिया तीसरे दौर में हार कर बाहर हो गए। उन्हें फिलीपींस के ट्रेट हुए और बेलारूस के मैक्स मेरनई ने 6-4 6-3 से हराया। लेकिन मिश्रित युगल वर्ग में भारत के लिएंडर पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने अमरीका की स्लोने स्टीफेंस और नीदरलैंड्स के जीन जूलियन रोजर को 6-4 7-4 से मात दी।
और अब कार्यक्रम में इससे पहले कि हम आपसे विदा लें मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में बर्फीला तूफान थम गया है, जिसके बाद वहां वाहनों की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध उठा लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि पाकिस्तान चरमपंथियों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसे दिखाना होगा कि वह चरमपंथी गुटों को कुचलने के बारे में गंभीर है। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री शिमोन पेरेस को तेल अवीव के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत थी। जिहादी गतिविधियों पर निगरानी रखने वाले समूह साइट का कहना है कि इस्लामिक स्टेट ने कथित तौर पर पेरिस पर हमला करने वाले संदिग्ध हमलावरों में से कुछ का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया है। बीबीसी समाचार,
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। एक घंटे बाद विश्व भारती लेकर फिर से हाजिर होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दे, नमस्कार।